सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा।
ओम शांति। सागर से गहरा प्यार तुम्हारा हो बाबा। तो हम सब भगवान के प्यार की पात्र आत्माएं हैं, जिसने हमारे गुलशन में क्या किया, खुशहाली ला दी। जो मुरझाई हुई जिंदगी थी उसमें क्या लाया, हरियाली ला दी, खुशियां ला दी। और क्या क्या लाया, क्या क्या लाया, हाँ जी, भाग्य लाया। हाँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली बना दिया। और क्या किया, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान, हाँ, खुशियां लाई। हाँ, और क्या लाया, शांति, शक्ति, हाँ, शिव शक्ति। और क्या क्या किया, स्नेह। हाँ, आज के मूल्य में एक बहुत सुंदर वाक्य था, क्या प्राइज मिला, स्वयं बाप प्राइज में मिल गया। पहली और प्राइज बताया ना बाबा ने, कौन सी पहली हल करने के लिए कहा, आज के मूल्य में पहली बताया था ना, इस पहली को तुम बच्चे हल करते हो। हाँ, हम सो सो हम, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो इस पहली को हल करने की बात कही। और क्या कहा, नहीं, हमारा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हाँ, जब चारों ओर आवाज गूंजेगा कि हमारा बाबा आ गया है, केवल ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, तो स्वीट होम का गेट खुलेगा, उनको मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हाँ, और क्या बताया? बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे और हम हाँ वाणी से प्रत्यक्ष हो जाएगा, जैसे बाप की वाणी वैसे हमारी वाणी। हाँ, अगर कोई कहे कि हमारा बाबा से प्यार है तो बोलो उनको, बोलो हमारा आप तो आपसे भी ज्यादा है, भले ना हो तब भी बोल दो ऐसे। हाँ वाह, वाणी साधारण अनुभव ना हो, साधारण अनुभव तो दुनिया वाले भी कराते हैं। बाबा कहते इतनी शक्तिशाली हो जो महसूस करे कि वो और कोई शक्ति बोल रही है, भगवान इनकी वाणी से जैसे बोल रहा है। और क्या बताया? हाँ जी, शक्ति दान करना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो बहुत सारी बातें हैं, मर्ज हो जाएगी। हाँ, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, इमर्ज और इमर्ज। तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ, दिलाराम दिलरुबा बच्चों को देख रहे हैं। तो सारे दिन में जब भी हमको मौका मिला तो अपने बुद्धि रूपी कलश को थोड़ा छलकाते रहना, ताकि वो जो ज्ञान हमको मिलता है ज्ञान जल से उसमें आत्मा नहाती रहे, आत्मा डुबकियां लगाती रहे, गोते खाती रहे, फ्रेश होती रहे। अगर हम स्नान नहीं करें दो चार दिन तो क्या होगा, एक दिन ना करें तो क्या होता है, कितना पसीने की बदबू आती है ना। तो अगर ज्ञान स्नान नहीं करे तो भिखारों की बदबू आती है आत्मा के अंदर से, व्यर्थ की, विकारों की, नेगेटिव की, अवगुणों की, खुशी गायब हो जाती है। तो कितनी सारी बातें, तो ज्ञान हमको मिलता है निरंतर स्नान करते रहना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म से महात्मा कैसी बन गई है, बहुत बाबा कहते मैली हो गई है, खाद पड़ गई है, आत्मा खोटी हो गई है। तो जो ज्ञान है इसको निरंतर किसी न किसी तरीके से स्मृति में दोहराते रहना है, और वो फिर हमारे संस्कारों में चला जाएगा, और जब संस्कारों में चला जाएगा तो स्वतः बाबा की वाणी, जो बाबा ने कहा ना वाणी से प्रत्यक्ष होगा, तो फिर एक तो महसूस होने लगे कि अलग अव्यक्त फरिश्ते हैं, बताया ना मुरली ने आज कि ये तो अव्यक्त फरिश्ते हैं। तो हमारा जो जीवन है वास्तव में केवल स्वयं के लिए नहीं है, बाबा ने कहा ना सेवा तो बहुत रही हुई है अभी, है ना, कितनों के 550 करोड़, तो 1988 की बात है, अभी तो कितनी है? पिछले 3 संडे में लगातार बाबा की ये बात आती है कि इतने करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन अभी तो बढ़ गई है वो, है ना, तो अभी 800 करोड़ के आसपास। तो सर्व आत्माओं को महसूस कराना है, तो उसके लिए महसूसता तो तब करा सकते हैं जब पहले स्वयं करेंगे। तो हाँ, शांति शक्ति का दान दो तो स्वतः वो सामने आएंगे, आकर्षित होंगे। ये कहाँ था, कहाँ था मुरली में, कहाँ था ये वाक्य बताओ? वरदान में, रूहानी की शक्ति से, जैसे प्रकृति की सेवा तुम करते हो मनसा सेवा, ऐसे रूहानियत की शक्ति के आधार पर अनेक आत्माओं को भी शांति शक्ति की महसूसता करो, वो आकर्षित होती रहेंगी। हाँ, मनसा सेवा से। तो हाँ, जितना टाइम भोजन करे तो उतना टाइम मुरली पढ़ाना अपने आप को। साउथ के आए, साउथ से आए ना आप? हाँ, पढ़ना पढ़ाना ठीक है। तो हम सारा दिन भोजन ही करते रहे फिर और मुरली पढ़ाते रहे अपने आप को, है ना, बढ़िया युक्ति। तो हमारा जो जीवन है जगत कल्याण के लिए, हम ये ना सोचें कि हम थोड़े से छोटे से स्थान में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन सारे संसार की निगाहें हम महात्मा पर घूम रही हैं, है ना। एक बार एक राजा था, तो उस राज्य में बहुत सारे नेत्रवादी थे, रोशनी नहीं थी उनकी आंखों को। तो किसी राजा ने, दूसरे राज्य के राजा ने उस राजा के पास सुरमा भेजा, काजल, सुरमा होता ना काले काले रंग का, कि ये सुरमा डालेंगे तो आंखें की रोशनी आ जाएगी, लेकिन केवल दो ही आंखों की रोशनी आएगी, किसी को एक को डाल सकते हैं। तो राजा के पास सुरमा आया, पत्र में लिखकर भेजा सारी विधि कैसे डालना है। तो राजा ने सोचा भी हमारे राज्य में तो बहुत सारे नेत्रवादित हैं, अब अगर किसी एक को डाला तो ये तो पक्षपात हो जाएगा, तो सबको कैसे डालें इसको। तो राजा सोचता रहा, आखिर में उसको याद आया कि हमारे राज्य का जो पुराना मंत्री है वो भी नेत्रबाधित हो गया है। तो उसका प्रिय भी था, बहुत सारे उसके काम सवारता था, तो क्यों ना उसको बुला के उसको सुरमा डाल दिया जाए। तो राजा ने उस पुराने मंत्री जो विश्वास पात्र था, उसका राज्य का काम काज में बहुत अच्छा सहयोगी था, तो उस राजा ने उस मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि आपके लिए ये सुरमा दो आंखों की रोशनी लौट आएगी अगर आप ये सुरमा आंखों में डालेंगे। तो मंत्री कहता अच्छी बात है। तो मंत्री ने सुरमा लिया और एक आंख में डाल दिया, तो देखा एक आंख खुल गई, दिखने लग पड़ा, और दूसरा जो सुरमा था वो उसने खा लिया, जीप पर रख लिया। तो राजा कहता है क्या किया, तो दूसरी आंख कम से कम खुल तो जाती है, तुमने खा लिया, अब बताओ क्यों खाया होगा। तीसरी आंख खोलने के लिए, और एक ये बात और, हाँ वो मंत्री इतना चतुर था कि उसको स्वाद का टेस्ट से पता चल जाए कि इसमें डाला क्या हुआ है, ताकि मैं और सुरमा बना के सबकी आंखें खोल दूं। तो बाबा भी जो हमको ज्ञान देता है, केवल वो अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमको दूसरों की आंखें भी खोलनी है, तीसरी आंख खोलना है। तो हमारा जो जीवन है वो जगत कल्याण की है, लोक कल्याण के लिए, ना केवल अपने ही कल्याण के लिए है। लेकिन पहला अपना चैरिटी, कल बाबा ने कहा ना चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो सबसे पहले तो ये वाला होम ही है ना, इससे शुरुआत करनी है, पहले खुद का करना फिर औरों का करना है। सही बात है। तो आज बाबा ने किसकी निशानियां बताई, कौन किससे मिल रहा है, दिल रूपा बाप मिल रहा है, दिलाराम बाप दिल तख्त जीत, दिल रूपा बच्चों से मिल रहे हैं, उनकी निशानियां बताई। तो बाबा ने तो बहुत सारी निशानियां बताई हैं, लेकिन उससे अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है, तो वो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चिंतन करना पड़ेगा कि और कौन कौन सी निशानियां हो सकती हैं, क्योंकि बाबा ने तो जो 10-15 निशानियां बताई हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, उसके अलावा कौन कौन सी निशानी, उसके चिंतन करना। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था ना, मनन करो, होमवर्क दिया था कौन सा, रमणीकता से बाबा को याद करने की युक्तियां, है ना, उसमें बहुत सारी बातें बताई थी, तो हम कैसे बाबा को अलग अलग तरीके से याद करें। तो इसी तरह से आज की जो मुरली में बाबा ने चिंतन के बिंदु हैं कि निशानियां कौन कौन सी हो सकती हैं जो दिल तख्त जीत दिल रुबा आत्माएं हैं, मन जीत जो जगत जीत। सही बोला आपने। तो बाबा के दिल में कौन से बच्चे रहते हैं जो जगत जीत होते हैं, और जगत जीत कौन बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि दिल रूबा आत्माओं को बाबा देख रहे हैं, तो दिल रूबा आत्माओं की निशानियां बताई कि जो निरंतर बाप के दिल में समाये रहते, अर्थात याद जो है बाप से जुड़ी रहती है उनकी, स्वतः नेचुरल शक्तिशाली बन जाते हैं आत्माएं, और उसकी निशानी वो सफल होती है हर कार्य में, और बाबा दिल से हटना नहीं चाहिए। सही बोला, जैसे आपका ही नहीं हट रहा है अभी। सही बोला, तो ऐसे उमंग सा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं माया जीत शक्तिशाली बन जाती हैं। एग्जाम्पल दिया कौन सा, जैसे नहीं और एग्जाम्पल दिया है स्टार्टिंग में कौन सा, जैसे संसार के राजे क्या बताया, तख्त और बैठते हैं तो वो सबके प्रिय हो जाते हैं, ऐसे तो महात्मा जब तख्त निशीन होती है तो बाप के दिल तख्त जीत अपने आप ही बन जाती हो, उनके दिल में बाप और सेवा निरंतर रहती है, श्वासों श्वास बाप और सेवा, कर्म करते बाप की भी याद रहे। तो ये कितनी सारी निशानियां हैं, तो हमको भी चेक करना है कि ये सारी निशानियां हमारे में हैं, अगर नहीं है तो पुरुषार्थ करना है। कब तक करना बताओ अभी, हाँ चेक कर तो करना पड़ेगा, हाँ कब तक किया, कब बाबा को टच किया, कब नहीं किया, तो चार्ट बढ़ना बड़ी टेढ़ी खीर है ना, पता तो नहीं चलता बुद्धि कितना उसमें खिसक गई है। तो हाँ सतानी चाहिए। तो बाबा ने भिन्न भिन्न साज सुने बच्चों के, कौन कौन से? चार प्रकार के साज, कौन कौन से बताओ अभी? नहीं, आज की मुरली से कौन कौन से साज? हाँ वो तो बाबा ने कहा जो श्वासोश्वास याद करेंगे वो मेरा बाबा मैं बाप का ये बताएंगे। लेकिन फिर बाबा ने कहा हर बच्चों के बाबा दिल के साज सुनते रहते हैं, तो भिन्न भिन्न साज है बच्चों के, चार प्रकार के साज बजाए, कौन कौन से? नहीं कथा तो बहुत आगे चली, कथा की तैयारियां कर ले पहले, हम बाद में कथा करेंगे। तो पहले बाबा ने बताया बच्चे अपनी कमजोरी के साज बजाते रहते हैं, अर्थात अपनी हम कमजोरियों का चिंतन करते रहते हैं। मैं तो हूं ही ऐसा, हमारा चिंतन ही नहीं होता, मुरली के पॉइंट याद रहते नहीं है, योग लगता नहीं है, मेरा के सहयोगी बनता नहीं है, तो हम अपनी कमजोरियों के चिंतन करते रहे। और जैसा चिंतन करेंगे वैसे चित्त में भी हमारे वैसी चीजें समा जाएंगी, और हमारा वो फिर वृत्ति भी वैसी हो जाएगी, और महसूस वैसे करेंगे, फिर शरीर भी कमजोरी लगेगा, फिर थोड़ा सा सवेरे क्या लगेगा, आज तो थोड़ा बुखार लग रहा है, वो बुखार नहीं होता, अपने अंदर के कमजोर संकल्प होते हैं, हाँ सामने से लगता है। तो कमजोरियों के साज, दूसरा कौन सा साज बताया? अपने आप, हाँ अपने आप के साज बजाते रहते हैं कि मैं ही सेवा करता हूँ, मेरी विशेषताएं हैं, मुझे आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, मेरे जैसा कोई है नहीं है, मेरी बुद्धि की इन्वेंशन जो बहुत अच्छी है, तो अपने साज बजाते हैं। अगर कोई थोड़ी भी सेवा करेंगे, देखा मेरे कारण इतनी सेवा होगी, तो ये अपने साज, ये भी बाप से दूर करते रहते हैं। तीसरे साज बताए, अपने साथ साथ और बाप के भी, अर्थात बाप की महिमा करेंगे लेकिन अपने भी कम नहीं करेंगे, अपने भी साथ साथ में बाप की आड़ में अपना भी महिमा करते रहेंगे। और चौथा यथार्थ साज, श्रेष्ठ साज वो ही है जो निरंतर बाप की स्मृति के हैं। तो वो वाले, तो हम अपने दिल में देखें झांक कर कि हमारे अंदर किसी प्रकार की मान शान की इच्छा तो नहीं है, क्योंकि दिल की भावनाएं बदलती रहती है निरंतर, दिल के अंदर किसी प्रकार के किसी का बदला लेने की भावना तो नहीं है, क्योंकि दिल जो दिलाराम बाप का है, अब इस दिल के अंदर क्या क्या बिठाना चाहिए, जो बाप के दिल में हो वो ही हमारे दिल में होना चाहिए। तो बाप के दिल में कौन कौन सी भावनाएं, कोई स्वार्थ की भावना तो नहीं है, मान शान की भावना तो नहीं है, तो बाबा की कौन कौन सी भावनाएं, बेहद की भावनाएं हैं। पिछले संडे की मूल्य में था ना, विशाल दिल, बेहद का दिल, बेहद की सेवा, बेहद की खुशी, बेहद का बाप, बेहद का घर। तो हम सभी बेहद बाप के बच्चे हैं, तो हमारी भावनाएं भी बेहद की होनी चाहिए, नहीं तो दिल कहीं कहीं लगा रहता है सारे दिन में, कितने लोगों से मिलते जुलते हैं, वो सारी चीजें याद रहती हैं और मुरली याद नहीं रहती है, तो क्या सिद्ध करता है कि हमारा दिल बाप से नहीं लगा हुआ, कहीं और ही लगा हुआ है, दिल के टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, और फिर शाम को टुकड़ों को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जुड़ते नहीं है, क्योंकि हाँ आप तो मुझे पूरे लाइट हाउस लग रहे हैं अभी हाँ ऑटोमेटिक करंट आता रहता है, तो सही बात है, बाबा आपसे बहुत प्यार करता है दिख रहा है अभी तो ऐसे भिन्न भिन्न साज कहीं हमारे दिल में दूसरे तो नहीं बज रहे हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना है। बाबा ने कहा निरंतर यथार्थ साज, अर्थात बाप की याद के, बाप के गुणगान करें, और ऐसे जो बच्चों के दिल में साज बजते हैं, बाप भी उन बच्चों के गुणगान करते हैं, उन बच्चों की महिमा करते हैं। तो देखना है सारे दिन में कौन कौन से साज बज रहे हैं, अपनी कमजोरियों का चिंतन नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरों की कमी कमजोरियां देखते रहते हैं, वो ही हमारे दिल में बसा रहता है। तो हम दिल रुवा बच्चे हैं, दिल दिलाराम बाप के, तो अपने दिल पर बाप को बिठा कर रखना है। बाबा ने कहा था ना अव्यक्त मुरलियों में 2016 के आसपास कि कोई पूछे आपके दिल में कौन है, तो बाप दिल में है, हमारे दिल में बाप है और बाप के दिल में बच्चे हैं। तो देखो भगवान हमारे दिल पर बैठने के लिए राजी हो गया है, और हम भगवान के दिल पर बैठने के लिए सोचते रहते हैं बैठे या नहीं बैठे, लेकिन भगवान किसके दिल पर बैठेगा और भगवान के दिल पर कौन बैठेगा, उसकी निशानियां कंडीशन भी तो है ना। तो जो प्योर होंगे, शुद्ध विचारों वाले होंगे, जो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, जिनके शुद्ध संकल्प रहते हैं, जो भले व्यर्थ चलते हैं लेकिन व्यर्थ को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं पूरे दिल से जिगर से, और ना निरंतर बाबा की याद रहे, हाँ व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। अगर बाप को दिल में समाने का अनुभव करेगा तो व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। तो ये अपने आप को चेक करना है कि सारे दिन में दिलाराम बाप को हमने कितना बैठा के, ये उसका कितना अच्छा व्यास है ना, कि बाबा का दिल है। भले अगर हम देह को नहीं भूलते हैं तो एक ये भी स्थूल में प्रयोग कर सकते हैं, एक बड़ा सा दिल, सुप्रीम सोल का बड़ा दिल और पूरा आ गया और पूरा मैं उसी के अंदर बैठा हूं आत्मा समेत और संपूर्ण प्योर हो रहा हूं, संपूर्ण पवित्र प्योर हार्ट, एकदम प्योर हार्ट बनता जा रहा हूं और मैं प्योर हार्ट के अंदर बैठा हूं। तो मैं तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति सारा संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा हूं। बाबा ने कहा ना जो दिलरुबा बाप दिलरुबा बच्चे हैं दिलाराम के, उनकी दृष्टि में क्या होगा, कदमों में क्या होगा, सुमन संपर्क में क्या होगा, बोल में क्या होगा। तो कहीं हमारे बोल ऐसे वैसे तो नहीं निकलते, साधारण बोल, साधारण बोल तो बाबा ने कहा साधारण अनुभव दुनिया वाले भी अच्छी अच्छी वाणी बोल के कराते रहते हैं, उनके भी अथॉरिटी वाले बोल होते हैं, किसी को भी प्रभावित कर देते हैं, लेकिन उनके बोल में और हमारे बोल में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए, है ना। देखा है संसार में कई कई भले वो ज्ञान में नहीं होते लेकिन उनके बोल इतने अच्छे होते हैं कि नपे तुले बोल होते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, और हम तो भगवान के बच्चे हैं तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, गिने चुने नपे तुले प्योर सुखदायी शुद्ध पवित्र ऊंच श्रेष्ठ, कितने शुद्ध होने चाहिए। तो वो बोल शुद्ध कब होंगे, जब पहले शुद्ध संकल्प हमारी बुद्धि में होंगे तभी तो बोल में आएंगे। और शुद्ध संकल्प कहाँ मिलेंगे, मुरली से, कौन से मुरली से, आज रोज की मुरली से मिलेंगे, ठीक है। तो मुरली से हमको शुद्ध संकल्प मिलते हैं, अर्थात बाबा की मुरली का हर शब्द जो शुद्ध संकल्प है, पवित्र संकल्प है, उन संकल्प है, उन संकल्पों को अगर हम अपने अंदर में भरते हैं तो हमारे संस्कार स्वतः परिवर्तन होते जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए कबीर व्यास कहते हैं ना कि बाबा से प्यार करने की जरूरत नहीं है, किससे प्यार करो, मुरली से प्यार करो, बाबा से प्यार अपने आप ही हो जाएगा। हाँ अमृत वेले याद करेंगे तो दिन भर याद रहेगा, हाँ सही बात है, और दिन भर याद करें तो अमृत वेले भी याद रहेगा। तो है तो सारा गोल्ड सर्किल है ना, अटेंशन तो दिन में भी रखना पड़ता है, लेकिन बाबा ने कहा है अगर अमृत वेला ठीक कर लिया तो सारा दिन ठीक है, अमृत वेला शक्तिशाली तो सारा दिन शक्तिशाली, है ना। पिछले संडे की मुरली में था ना, कौन सी मुरली थी, दाता वरदाता विधि विधाता, है ना, के हाँ सिद्धि स्वरूपात में हमारे संकल्पों के आधार पर ही संसार चल रहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे सतो प्रधान संसार सतो प्रधान, तुम हंस रहे हो संसार खुश है, हम रो रहे हैं संसार रो रहा है, हम पवित्र हैं संसार पवित्र है, हम गिरती कला में संसार गिरती कला में, हम उड़ती कला में संसार उड़ती कला में। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना बड़ा कार्य दिया है, माना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा ने देखा ये बच्चे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में सक्षम है, शक्तिशाली है, ये कर सकते हैं, बाबा को हमारे ऊपर कितना फेथ है। लेकिन हमारा हमारे ऊपर फेथ कम हो जाता है, बाबा की तो बाद की बात है। इसलिए बाबा से प्यार है तो मुरली से प्यार को बढ़ाना है, अगर डायरेक्ट मुरली छोड़ के बाबा से प्यार करेंगे नहीं बढ़ेगा प्यार, क्योंकि बाबा खिसकनी चीजें खिसक जाता है, लेकिन वो जो खिसकनी की चीज के साथ एक ज्ञान के पॉइंट लगे तो पकड़ में आ जाते हैं, फिर बाबा उसी में पकड़ में आ जाता है। तो ज्ञान से प्यार को बढ़ाना है, पहले बाबा को याद करके फिर बाबा को ज्ञान की पॉइंट सुनानी है कि बाबा आज आपने हमको सुनाया, आपको याद है कि आपने सुनाया, ऐसे करना, ठीक है ना। ये भी रमणीकता अच्छी बात है, नई बात सुना दी आपने, ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो बाबा का अनुभव स्वरूप मिलाना, हर बात को थोड़ा भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसको स्वरूप मिलाना, जैसे आज की मूल्य में कितने ढेर सारे पॉइंट है ना, लेकिन थोड़ा सा तो हम स्वरूप मिलाना, जैसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को प्राइज मिलती है, कौन सी, स्वयं भगवान हम सबको प्राइज में मिल गया है, तो सारे संसार को प्राइज देने वाला खुद ही अपना हो गया तो कितनी बड़ी बात है, प्राइज को कितना संभाल के रखते हैं, है ना। कोई हमको गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट को हम कितना संभाल के रखते हैं, उसको यूज करना होता है, अगर खाली रखते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें जंक लग जाएगा, खराब हो जाएगी, उसका फिर फायदा कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, हर समय मुझे यूज करो, हर कार्य में, है ना, बताया ना, साथी को साथ लेके चलो, कहाँ लेके चलो, कहाँ जाओ, लेकिन जाओ कहाँ, ठीक बोला आपने, तो साथी को साथ लेके चलना है, है ना, माता जी कितने मंगसा की नशे के बता रही बातें ना, तो आप ये प्रैक्टिकल में करते हैं तभी तो बोल रहे हो ना, चेहरे से दिख रहा है आपका। हाँ, तो बाबा से रोटियां बनवाई आपने, सब काम करवाया। हाँ, हर बहुत खुशी रहती है, तो दिख ही रही है। हाँ, किसी को ज्ञान देना है आत्माओं को तो पहले बाबा को ही मर्ज करो और ही सेवा करो। तो हाँ, जो बाप की छत्रछाया में रहते हैं वो सदा छत्रधारी। और क्या बोला इसके आगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर किसी को ज्ञान सुनाते हैं, पॉइंट सुनाते हैं, सामने वाले को तीर लगता है और वो तीर लगने के बाद क्या होता है, घायल हो जाता है। और बाप, बाबा ने कहा ना, तुम्हारे बोल बाप से संबंध जुड़वा दे, दृष्टि से, रूहानियत से, है ना, कदमों से, हर कदम में महसूस करें कि इनके साथ परमात्म बाप साथ में है, तो वो महसूस करें। तो ये कितनी सारी बातें बाबा हमको बताते हैं, तो साधारणता हमारे जीवन से खत्म हो जानी चाहिए। और गीत कौन सा बताया बाबा ने, नहीं ये गीत थोड़ा मास्टर सर्वशक्तिमान, वो तो सर्वशक्तिमान को साथ रखो, ये भी गीत बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो गीत कौन सा बताया बाबा ने आज, नहीं वो दूसरा मेरा बाबा वाला एक और गीत बताया, बोला इस गीत में टाइम नहीं लगता है, कौन सा गीत बताया, चुप रहने का। बाबा ने कहा ओके, तो कैसे बोल गए, देखो सबको याद भी है फिर भी बता नहीं रहे आप, मना अपने पास ही रखना चाहते आप। तो बाबा ने कहा ओके, लंबे चौड़े नहीं, लंबे चौड़े क्या होती हैं, राम कथाएं। तो बाप ये राम कथा सुना रहे हैं, कौन कौन से जो बिन बिन साज है अपनी कमी कमजोरियों के, तो हमें ओके का इसमें बाबा कथा खुशखबरी सुनाने में टाइम नहीं लगता है इसमें, अगर खुश है। अगर कोई बीमार है तो अपनी बीमारियों का वर्णन करते रहते हैं, और खुशी हो तो उसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, चेहरे से पता चलता है कि कुछ तो मिला हुआ है। तो हमको कौन सी कथा करनी है, कृष्ण कथा राम कथा है, कृष्ण कथा करनी है, शिव कथा करनी है, सारा झंझट ही खत्म। शिव कथा करनी है, शिव कथा कैसे करते, जब पहले शव बनेंगे तो होगी शिव कथा। हाँ, बाबा की याद में अन्न पकाना वो बाप का बन जाता है, बच्चे में आ जाता है, कहने का अर्थ है कि वो बाप का बन जाता है। तो साउथ वाली भाषा ना बड़ी अच्छी होती है ना। तो क्या हुआ एक बार, अब साउथ वाले तो भाषा तो अपनी तरफ से अच्छी बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सामने वाले तो समझ ही जाते हैं ना। तो ऐसे दादियां आती है, भाई आते हैं, तो साउथ वाले ऐसे बोलते हैं दादी जी आ गए, अभी दादी जी आ रहा है, और भाई हो तो निर्वैर भाई जी आ रही है, ऐसे बोलेंगे। तो कितना ये होता है, लेकिन पता तो चल जाता है। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही आपस में पिकनिक कर रहे होंगे भाई बहन अपने, बीके भाई बहन, तो साउथ के भाई थे और नॉर्थ की बहन होगी, तो नॉर्थ में थोड़ा हिंदी ठीक ठाक ही है और साउथ में थोड़ा और ही अच्छी है ना। तो ऐसे खा पी रहे थे आपस में ना, तो बहन बैठी होगी, तो बहन ने वो भाई को बोला कि ये चीज तो बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी जो आपने चीज रखी है तो अच्छी है चीज। तो भाई तो कहता कोई बात नहीं, अच्छी चीज है तो है, बोला अगर आपको चाहिए, हाँ ले लो कोई बात नहीं, हमारे घर की चीज, ऐसे बोलना था उसको, आप ले लो। बोला ले लो कोई बात नहीं, आप तो हमारे घर वाली हो। तो कितना फर्क पड़ गया। तो हाँ, तो वो बाबा सिखा देते है ना। हाँ, इंग्लिश भी सिखा दिया, हिंदी भी सिखा दिया। हाँ, बाबा कहते ना वो माताएं जाती है, अनपढ़ माताएं होती है, लेकिन कहाँ जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है। हाँ, अब यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग हमको भी नहीं आते होंगे लिखने के, लेकिन बाबा ने बच्चों को कैसे बना दिया है ना, कितना कितना ऊंचा ज्ञान दे दिया, सारी नसें खुल गई बुद्धि की। तो बाबा की कृपा हमारे ऊपर कितनी हुई, तो सागर ने सारा जल हमारे ऊपर, सारा प्यार हमारे ऊपर उड़ेल दिया और हमको पवित्र बना दिया, शुद्ध बना दिया, बुद्धि जैसी विशाल बना दी, जो संकुचित मानसिकता थी वो खत्म हो गई। तो बाबा से हमारा कितना प्यार बढ़ गया, कितनी सारी बातें बाबा ढेर सारी बातें बताते रहते हैं, है ना। अच्छा और क्या बताया, याद की शक्ति से क्या क्या होता है, आज सारे दिन में क्या किया, कुछ तो मुरली पढ़ी होगी या पढ़ाई होगी सुनाई होगी, नहीं करनी चाहिए। तो याद की शक्ति से क्या क्या होता है, याद की शक्ति से बल मिलता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, सफलता मिलती है, खुशी मिलती है और आयु बढ़ती है, सफलता मिलती है और कई तरह के विघ्न समाप्त होते। तो बाबा ने तो तीन चार बातें बताई लेकिन हमको अपना चिंतन बना रहा है, वातावरण शक्तिशाली होता है, संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं तो अच्छे अच्छे संकल्प टच होते हैं, है ना, महसूस होता है कि ये तो नए नए विचार आ रहे हैं। तो जितना बाबा की याद में बैठेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र सतो प्रधान हो जाएगी, दूसरों की वृत्ति बदल जाएगी, आसपास का वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा, सकाश शक्ति तरह से दे सकेंगे, है ना, आयु बढ़ेगी, खुशी रहेगी, शक्ति रहेगी, है ना। तो दृष्टि दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हो जाती है। तो कितनी सारी बातें हैं, याद के ऐसे ढेरों फायदे हो सकते हैं, अगर हम चिंतन करने बैठे तो कम से कम 100-150 तो निकल आएंगे, धीरे 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 चिंतन निकल आता है। और पिछले संडे की मुरली में बाबा ने तीन बातें कही थी, खुशी नशा और शक्ति, खुशी शक्ति और नशा कैसे रहेगी, बाबा ने कहा ना तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक है जो बाप को जानते हैं, जानना मानना और चलना, हाँ। तो ये भी हमको याद रखने के, हम ज्ञान को जान तो गए हैं लेकिन उसको मान कितना रहे हैं और उस पर चल कितना रहे हैं। तो ये जो डेली की मुरली, इसमें ये तीनों चीजें देखनी है, ये मुरली को पहले हमने जाना कितना, फिर उसको कितना मान रहे हैं, फिर उस पर कितना चल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ चिंतन करना पड़ेगा, कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ सुनाना पड़ेगा, तभी तो हमारी बुद्धि खुलेगी, नहीं तो दूसरी दूसरी बातों के लिए तुरंत हमारे संस्कार बड़े कुटिल हैं, माया बड़ी सूक्ष्म है और वो अंदर ही बैठी हुई है। कहां से देखती है वो, हाँ। तो माया आपको आती है कभी, लगता तो नहीं है, आती है, कैसे आती है, फिर क्या करती है आगे। तो बाबा से वरदान लेने, हाँ, बाबा को बुला देती है, तो बाबा हमको अनेक युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम माया जीत जगह जीत बन जाते हो अगर दिलाराम बाप की छत्रछाया में रहेंगे। तो याद की शक्ति, दूसरी बात बाबा ने कहा साक्षीपन की अवस्था, है ना। तो इस अवस्था की बहुत बहुत जरूरत है, हमको हर समय साक्षियों के रहेंगे तो कितनी बातें उसमें, न्यारेपन की स्थिति का अनुभव होगा, बाप के प्यारे बन जाएंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी, शक्तिशाली बन जाएंगे और कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन साक्षी होंगे कैसे, उसके लिए लंबे समय से अशरीरी अवस्था का अभ्यास, बाहर इस देह से डिटैच होना, जितना हम इस देह से डिटैच होते हैं उतना ही साक्षी अवस्था हमारी मजबूत होती जाती है। हमने लास्ट के दिनों में देखा, बड़े दादी जी नजदीक से भी जब जब जाते थे जैसे दादी एकदम पूरा साक्षी होकर देख लिए और बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन आते थे उनसे, बड़े दादी जी से, है ना। तो साक्षी अवस्था बनानी है, अशरीरी अवस्था बाबा ने पिछले संडे में बताया था ना, पिछले से पिछले अशरीरी, यहां अशरीरी बनेंगे तो क्या होगा और देह से डिटैच होंगे तो क्या होगा, 10-9 बातें बताई थी। पिछली बातों को भी ना बुद्धि में बार बार घुमाते रहना है, आपस में एक दूसरे से चर्चा करो, पड़े अगर देह से डिटैच होंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, बताया था ना, अशरीरी बनेंगे तो निरोगी बनेंगे और आयु बढ़ती जाएगी, और यहां सर्फ जानवर से संपन्न होंगे तो वहां भी सर्फ जानवर से संपन्न हो जाएंगे। आत्मा अलग होती शरीर अलग होता है, हाँ। कब, जब कि बाबा की याद में बैठते तो ऐसी महसूसता होती है, हाँ। तो ये थी बात उपराम स्थिति। फिर बाबा कहते हैं और क्या स्मृति में रखो कि कर्ण करावन हार बाप साथ है, बाबा करावन हार हमारे से करा रहा है, अगर ये रहेगी स्थिति तो क्या होगा, कोई बोझ नहीं होगा, हल्के रहेंगे, एक रस रहेंगे, बेफिक्र भाषा रहेंगे, है ना। आज मुरली में तो सारे दिन में थोड़ा बहुत साथ रखा, जैसे माता जी ने बताया कितना अच्छा बताया कि साथी को साथ रखो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सारे दिन में हमको यूज करना है बाबा को, बाबा तो अपने आप को यूज करने की हमको ऑफर देता ही है, लेकिन उस ऑफर को हम स्वीकार करें, अपने जीवन में लाएं, थोड़ा थोड़ा लाते जाएं, थोड़ा भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो उसका ध्यान हमारे ऊपर निरंतर रहता है, क्योंकि हम अटेंशन रखते हैं तो बाबा भी देखते हैं कि बच्चा अपने क्षमता अनुसार कर तो रहा है कम से कम। तो हमको व्यर्थ से बचाने के बाबा अनेक मार्ग दिखा देगा, नहीं तो हम व्यर्थ में डूबे रहेंगे। अगर व्यर्थ में जाएंगे तो तुरंत संकल्प आएगा कि नहीं करना, नहीं करना है, और वो नहीं करने की बाबा शक्ति देगा, रोकेगा उसको। लेकिन वो स्मृति में लानी पड़ेगी सारी बातें। तो कर्म करते हुए हमारी कर्म योग्य स्थिति है ना, तो कर्ण करावनहार, करावनहार बाबा करा रहा है। हाँ, तो हम उसके बेफिक्र बादशाह बच्चे हैं, निमित हैं, वो सदा हल्के हैं, उड़ते फरिश्ते हैं। निमित और ट्रस्टी, निमित और ट्रस्टी में दोनों में क्या अंतर है? और निमित ट्रस्टी बाबा करवा रहा है। हाँ, तो न्यारे और के करना, ट्रस्टी माना हमको संभालने के लिए दिया हुआ है और निमित बनकर कर रहे हैं। ट्रस्टी को हिंदी में प्रन्यासी कहते हैं, प्रन्यासी। तो जैसे बार भी लगा ना, दादी जी के, बड़े दादी की तीन बातें कौन सी हैं? निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। और भी को लिखी है तीन बातें कौन सी? नहीं, बड़ी दादी जी के चित्र में ऊपर भी तीन बातें और भी है ना, सह से शुरू होती है सारे तीनों। संपन्न, संपन्न संपूर्ण और पवित्र भव। और दादी जानकी जी के चित्र पर क्या लिखा हुआ है? सच्चाई, सफाई, सादगी, तीनों सौ से थे। और बाबा की तीन बातें अंतिम वाली, निराकारी, पहले कौन सी बात है? निराकारी। और दूसरे नंबर पर निर्विकारी, तीसरे नंबर पर निरंकारी। और शांति स्तंभ पर क्या लिखा हुआ है? चारों तरफ 18 बातें। नहीं नहीं, शांति स्तंभ नहीं लिखा, गेट पर लिखा हुआ है पवित्र बनना और बनाना, दिव्य गुण धारण करना और करना, याद की यात्रा में रहना एक तरफ, और दूसरी तरफ समय कम में गफलत मत करो, ज्ञान रत्नों का दान करो, तीसरी तरफ हाँ मन वचन कर्म से किसी को दुख ना दो, और तो ही बहुत ज्यादा संगम का समय है, निश्चय में बुझे है। हाँ, तो ये ना बातें चक्कर मारते तो क्या करते, शांति स्तंभ पर जाकर खाली देख के आ जाते, जो उस पर लिखा उसको पढ़ने का बार बार दोहराना बुद्धि में, तो वो साधारण वाक्य नहीं है, उस भगवान के वाक्य, उनमें शक्ति है, वो ज्ञान ही हमारी आत्मा का भोजन है। जब हमको याद हो जाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी बाबा के अंदर में। किसी को फेस के देखते रहे तो फेस से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो सामने वाला बोल रहा है उसको हम अगर जीवन में लाएंगे तो वो हमारे से प्यार करेगा। हम सवेरे सवेरे बाबा से दृष्टि तो ले रहे हैं, लेकिन जो आकर बाबा सुना रहे हैं उसको तो हम कर नहीं रहे हैं, तो दृष्टि लेके हमारे में परिवर्तन कहां होगा? फिर उनको कैच करना पड़ेगा, उनकी दृष्टि में क्या क्या है, वो हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो बाबा का हमारे प्रति कितनी ऊंची भावना है, ज्ञान की गहराई में जाना है, तो ज्ञान को ज्ञान से प्यार बढ़ाना है। तो ये था तीसरी बात कि करावनहार बाप करा रहा है। तो चौथी बात थी, हम कौन है? बाबा के रूहानी फरिश्ता, ऐसा अपने को अनुभव करते हो? रूहानी फरिश्ता अर्थात सदा उड़ने और उड़ाने वाले अलौकिक आत्माएं हैं, अलौकिक आत्माएं। और इसमें बाबा ने कहा तुमको बाप जैसे पहेली दे रहे हैं, कौन सी? हम सो सो हम की। तो सारे दिन में हम इस पहेली को सुलझाते हैं, है ना? ब्राह्मण सो देवता। अब एक ब्राह्मण, क्या मैं ब्राह्मण बनाऊं? पहले हम ये सोच ले कि मैं ब्राह्मण बनाऊं, ब्राह्मण ही बहुत बड़ी बात है। अगर ब्राह्मण बन जाएंगे ना पूरी तरह, तो फरिश्ता तो सेकंड में बन जाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट पहले फरिश्ता बनना चाहते हैं। और ब्राह्मण तो पूरी तरह आचरण में लाना, हाँ, जो भी नियम मर्यादाएं हैं छोटी छोटी बड़ी सारी, वो हमारे आचरण में होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, दो प्रकार के ब्राह्मण है, मुख वंशावली, कुख वंशावली, हाँ, और तीसरे धामा खाने वाले भी होते। तो देखना है, हर बात को अपने दिल से लगाना है कि हम सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण अर्थात क्या? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म लोक में जाता है, ब्रह्मा समान बनने की प्रतिज्ञा करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा के आचरण पर चलने के लिए अपने आप को पढ़ाता है, ब्रह्मा भोजन ब्रह्मा बाबा की याद में खाता है, शिव बाबा की याद में खाता है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त के कितने फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त अच्छी तरह से करता है। तो सच्चा ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कथा करते हैं, कराते हैं, कौन सी कथा? शिव कथा। तो देखने में ब्राह्मण बनाऊं, ब्राह्मण ही बन जाएंगे तो ही बहुत बड़ा नशा रहेगा। चेक करो, ब्राह्मण अर्थात चोटी, फरिश्तों से भी ऊंची है, देवताओं से भी ऊंची है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों से भगवान का रिश्ता है। तरसते हैं, तरसते हैं, तो देखा कभी तरसते के लिए? तो ऐसे गाय ने, क्योंकि वहां तो भगवान का भोग लगा हुआ नहीं। हाँ, ऐसे शक्ति दिया है सिद्धिदाता। पिछले संडे बताया था ना सिद्धि, तो यहाँ आज की मूल्य में बताया ना कि सिद्धि अर्थात सबको सदगति की राह दिखाने वाले है ना, तो ये वाली बात थी। और बाबा ने क्या कहा, कौन सी चाबी दी आज? एक चाबी दी थी ना, भूल गए? चाबी लेके भूल गए या ली नहीं बाबा से? कौन सी चाबी दी? मेरा बाबा। और दृढ़ता, दृढ़ता की चाबी। हाँ, तो जैसे साउथ में दृढ़ता बोलते हैं और नॉर्थ में दृढ़ता बोलते हैं तो दृढ़ता की चाबी दी, सफलता। कौन सफलता की चाबी कौन सी है? दृढ़ता। तो जो भी हम छोटे छोटे गोल करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, बड़ा पुरुषार्थ की बजाय छोटे छोटे पुरुषार्थ करने हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल यूज करते हैं, है ना, तो उसका टाइम निश्चित कर देना है कि आज हमको इतना समय मोबाइल चलाएंगे, जितना हमारा काम है उससे एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे, क्योंकि बड़े आकर्षण है इन चीजों में, हमारा बहुत टाइम चला जाता है। और ये भी अनुसंधान है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बहुत प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, हमारी अंदर की एनर्जी खा जाता है सारा ही, वो सिर दर्द हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, है ना, दुखने लगेगा सिर, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इन चीजों से दूरी बना के रखना बहुत अच्छी बात है। जो तो यूज नहीं करते हैं वो तो बहुत बहुत धन्य है। जो मोबाइल, कौन कौन मोबाइल यूज नहीं करते इधर, कोई है? हाँ, और बाकी करते हैं, अच्छी बात। जो करते हैं ना बहुत अच्छे हैं वो भी, और जो नहीं करते वो भी अच्छे हैं। लेकिन हमको यूज करना, कितना समय करना उसका फायदा लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, क्योंकि हमको जिस कार्य के लिए भगवान ने चुना है उस कार्य के प्रति अगर हमारा ध्यान नहीं रहे तो फिर बाबा भी हमको क्या कहेंगे, है ना। और कौन सी बात थी मुरली में, और क्या था? है जी, सब बच्चे। हाँ, एक थी बाबा ने कहा अभी मार्जिन है, किस चीज में? बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तेज चलते चलते रुक जाते हैं, और जो विधि पूर्वक धीरे धीरे चलते रहते हैं वो आगे चले जाते हैं, है ना। इसकी एक कहानी है, किसकी? सबने पढ़ी होगी वो, खरगोश और कछुआ। तो हमारे पास एक वीडियो भेजा किसी ने, तो उसमें खरगोश और कछुआ चल रहे हैं, तो खरगोश भाग के आ रहा है, सचमुच वो वीडियो है, तो आगे आके वो रुक जाता है, और उसको जो ट्रेन रहे देने वाले उसको इशारा भी दे रहे आ जाओ, आगे बढ़ता ही नहीं वो, और कछुआ धीरे धीरे आते आते आगे बढ़ जाता है। तो ये भी हमारे पर कहानी है जी, वो थकानी, अर्थात हमारा पुरुषार्थ। इस स्टोरी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारा पुरुषार्थ निरंतर और एक रस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो हम 2 बजे उठ गए और अगले दिन पूरा हम शांति, या 2 बजे उठ गए आकर नींद कर रहे हूं। तो हमको जो सामान्य दिनचर्या अभी बनी है उसमें भी अगर हम एक्टिव, 3:30 बजे उठो, लेकिन जो भी हम योग करते हो वो अच्छा एक पावरफुल होना चाहिए। बाबा ने कल कहा ना, बाप तुम बच्चों को राय देते हैं, कौन सी? सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, खुशी रहेगी सारे दिन में, शक्ति रहेगी। तो सवेरे सवेरे उठ के प्यार से क्यों नहीं याद कर पाते हैं? क्योंकि पहले से हमारी प्लानिंग नहीं होती है। तो विधि पूर्वक थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि हमको बाद में पता तो चले, नहीं तो यहां भी गड्ढा खोद गया, वहां भी खोदा खोद दिया, 1 घंटे में 10 गड्ढे खोद दिए और पानी निकला ही नहीं। लेकिन एक ही खड्डा अगर धीरे धीरे खोदते जाएंगे तो नीचे पानी आ जाएगा। तो जो भी हम पुरुषार्थ के उस पर हमको डट के रहना है, थोड़ा थोड़ा भले करें लेकिन सार निकलना चाहिए हमारे हाथ में, कुछ तो परिणाम आना चाहिए, पता चले कि हाँ पुरुषार्थ से कुछ बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा का ज्ञान या बुद्धि हमारी शुद्ध हुई है, हमारी एकाग्रता बढ़ी है, मन बुद्धि नहीं भटका है, बाबा से प्यार की अनुभूति है, 2-4 अंकों से आंसू भी आ गए हैं, है ना। आंसू किस किस को आते हैं? अभी आते हैं कौन से? इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से आते हैं, दो प्रकार के आंसू होते हैं, आते नहीं है वो तो माना बाप समान है, वो तो आप तो फिर ऊपर पहुंच गए समझो। हाँ, क्या रोना है अभी? लेकिन अगर नींद, अगर आंसू आते ना तो आने देना, दबाना नहीं है कहीं भी। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, अगर रोना आता ना तो रो लेना चाहिए, दबाना नहीं रोने को कभी भी। एक नहीं आए वो अलग बात है, अगर रोना आता है और जबरदस्ती में दबा रहे हैं, दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी बाद में वो अंदर से उठ सकता है। इसलिए जो है जैसे हमको सबके सामने वैसे प्रत्यक्ष होना है, जबरदस्ती नहीं करना है। गाला, हाँ, बाबा के गले की माला की मोती बन जाएंगे वो। हाँ, वो तो प्यार के आंसू है। हाँ नहीं, खत्म ही हो गए सारे आंसू, ही खत्म हो गए अंदर से। बाबा वो कहते ना, मैं वो ब्लॉटिंग पेपर हूँ, चूस ली उसने सारे। तो ऐसे बाबा की ढेर सारी बातें हैं, ऐसे आपस में जब भी दिन में टाइम मिले तो ज्ञान की चर्चा करनी है, छोटे छोटे ज्ञान के प्रयोग करने हैं। मधुबन में आना माना बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ टाइम हमारा पूरा सफल होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
गुलशन में छाई हरियाली तेरी कृपा से है खुशहाली, मधुबन में खुशबू तेरे दम से घर घर शांति प्रभु तुम ही से, पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, तेरे है हर पल सुनहरा।